यात्रा है, राम की यात्रा फिर शुरू हो गई है, राम का आयन शुरू हो गया है। जाना है उन्हें सुग्रीव के पास, सुग्रीव के पास जाना है। लेकिन मार्ग जहां तुंग भद्रा नदी बह रही है, प्राचीन समय में तुंग भद्रा पंपा नदी है, और पंपा नदी का पंपा सरोवर भी है। राम पंपा कावेरी नदियों को पार करके सीतान्वेषण में, सीतान्वेषण में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर आ गए हैं लौट करके पंपा नदी की तट। राम को जाना है कर्नाटक के किष्किंधा, नदी तट के पास ही है ऋषि मातंग का आश्रम। कबंध ने राम को मातंग ऋषि के आश्रम में भी जाने की सलाह दी। इसी यात्रा में, इसी यात्रा में मातंग ऋषि के आश्रम से ही राम को सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग भी मिलना है। मातंग ऋषि का तो देह विलय हो चुका है, और मातंग ऋषि के आश्रम की संरक्षिका है शबरी। आ गए हैं राम शबरी के पास। शबरी राम का स्वागत करती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर केरल में शबरी इन मातंग ऋषि के आश्रम में बड़ी अल्प आयु में आ गई, बहुत कम उम्र में आ गई थी शबरी। शबर माने भील, शबर की जो राजा था भीलों का, उसकी बेटी है शबरी। और जब उसका विवाह होने वाला था तो शबरी ने देखा कि बड़ी मात्रा में पशुओं को इकट्ठा किया गया है, और उनको मार करके उनका मांस अतिथियों को परोसा जाने वाला है। तो शबरी को बड़ी विरक्ति हो गई और विवाह छोड़ करके चले आई। वितृष्णा से भर गई थी शबरी और चले आई ऋषि मातंग के आश्रम। और मेरे राम, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं और जो 22वें तीर्थंकर हैं नमिनाथ, और जो राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, आगरा और इटावा के बीच में जो बाह क्षेत्र आता है, वही राज्य क्षेत्र था उनका नमिनाथ। उनके साथ भी यही हुआ कि जब विवाह करने के लिए वे अपनी बारात लेकर के पहुंचे और कन्या पक्ष के यहां देखा कि सैकड़ों जानवर ला करके इकट्ठा किए गए हैं काटने के लिए, मांस पकाने के लिए, तो उनके अंदर भी वितृष्णा जाग उठी, अहिंसा जाग उठी, और वो भी विवाह छोड़ करके मुनि हो गए। ये शायद एक मिथक, इसका प्रयोग कई जगह किया गया, विवाह छोड़ करके ऋषि मातंग के आश्रम में आ गई शबरी और यहां सेवा कार्य करने लगी, सेवा कार्य करने लगी यहां आकर के। शबरी चूंकि श्रम और सेवा का व्रत ले चुकी है, इसीलिए शबरी को श्रमणा भी कहा गया है, श्रमणा भी कहा गया है। वर्तमान शबरीमाला मंदिर जिसकी चर्चा होती है, कोर्ट का निर्णय हुआ है, ये भी तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है केरल में, लेकिन शबरी से इस तीर्थ का कोई संबंध नहीं। शबरी संवेदना और अहिंसा की अधिष्ठात्री है। शबरी के आचरण से, शबरी के आचरण में संवेदना और समर्पण प्रमुख तत्व। मेरे राम, प्रमुख तत्व क्या है? संवेदना। संवेदना क्या है? मेरे सिग्नेचर टच में देखिए मेरे राम, संवेदना उपदेश नहीं है कि किसी के साथ कुछ घट गया और दूसरा बैठ के उसको उपदेश देने लगा, ये तो उस व्यक्ति को परेशान करने का काम होता है जो सामान्य मानव करता ही रहता है। संवेदना, दूसरे की वेदना के सम हो जाना, जुड़ जाना, यानी दूसरे की वेदना के अनुकूल आचरण करना। संवेदना में आचरण है, केवल मौखिक उपदेश नहीं। याद रखना मेरे राम, किसी से संवेदना व्यक्त करते समय जुड़ना उससे, उस व्यक्ति के जो वेदना है उसके अनुकूल बात करना। किसी के परिवार में अगर कोरोना हो गया है तो ठीक होने वाले देश के लोगों की बात करना, उसे यह न बताना कि अब तक कितने की मृत्यु हो चुकी है, या तुम सैनिटाइजर लगा लो, मास्क लगा लो, ये न बताना उसको, ये तो वो जानता है। क्या बताओगे तुम, उससे ज्यादा कौन जानता है? तुम तो सुन सुन करके जानते हो, वो भोग करके जान चुका है। उसके अनुकूल कार्य करना, मदद करना, ये एम्पैथी का ही एक पार्ट है। संवेदना बड़ी चीज है, इसलिए श्रमणा शबरी के अंदर है समर्पण और संवेदना। और सीता के अपहरण के बाद राम निपट अकेले रह गए। निपट अकेले मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मण तो उनके अंदर समाये हुए हैं। लक्ष्मण शरीर रूप में तो साथ हैं, लेकिन ये तो एक जिल्द में बंद दो किताबें हैं। लक्ष्मण अलग कहां है, अंदर समाये हुए हैं, और राम लक्ष्मण के बीच संवाद भी अति सीमित और मर्यादित है। लक्ष्मण राम को इतना अधिक महसूस करते हैं कि राम का सब कुछ अनकहा, सब कुछ अनकहा जो राम ने कहा भी नहीं है, लक्ष्मण के लिए सुना हुआ होता है। क्या कहें राम लक्ष्मण से? राम सीता अन्वेषी है, सीता का अन्वेषण कर रहे हैं। इस यात्रा में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला है जो उनकी संवेदना से जुड़ सके, उन्हें छू सके। शबरी, शबरी के जीवन का उद्देश्य ही है स्वयं के लिए कुछ न पाना। शबरी का जीवन तो उन्हें समर्पित है, जो उत्कृष्टता से परे जा रहे हैं। और मेरे राम, प्रत्याशा के बिना, बिना किसी प्रत्याशा के दूसरे के लिए समर्पण देना ही तो सेवा है। प्रत्याशा के लिए, कुछ चाहने के लिए, और एनी काइंड ऑफ द रिटर्न जो कर्म किया जाता है वो तो नौकरी है। शबरी का जीवन नौकरी करने के लिए नहीं, शबरी के जीवन का उद्देश्य ऋषि मातंग की सेवा करना रहा है। और अब शबरी के सामने राम, राम का दुख है, राम की सीतान्वेषण की अभिलाषा है। शबरी अपने स्नेह से, सेवा से राम से जुड़ती है। और शबरी को भक्त कहा गया। भक्त क्या है? अहंकार विहीन समर्पण ही तो भक्ति है। अहंकार विहीन समर्पण, भूखे राम की आत्मा को शबरी यह संदेश देती है कि समष्टि के लिए समर्पित व्यक्ति को अंदर और बाहर के दुखों से परे जाना ही होता है, जाना ही होता है। दुख अंदर के भी है, दुख बाहर के। राम को यहां अपने कर्म की दृढ़ता का प्रबोधन मिलता है, परसिस्टेंस का प्रबोधन मिलता है। शबरी राम को सुग्रीव तक पहुंचने की सही दिशा का ज्ञान कराती है। अज्ञात सुग्रीव के बारे में उसके भाई बलि के बैर और सुग्रीव की पत्नी का अपहरण जो बलि ने किया उसकी सूचनाएं शबरी से ही मिली। राम ऋषिमुख पर्वत की ओर अपना आयन केंद्रित करते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि अब राम को शबरी ने दिशा स्पष्ट कर दी, शबरी ने दिशा स्पष्ट कर दी है कि जाना कहां है, किधर जाना है, रास्ता किधर है। और अब जो मार्ग है उस मार्ग में अब कहीं ठहरना भी नहीं है, ऋषिमुख पर्वत पर जाना है और जाकर के मिलना है सुग्रीव से और आगे की रणनीति बनानी है। देखिए जब राम चले थे पंचवटी से तब उन्हें न तो ये पता था कि कबंध मिलेगा, सुग्रीव के बारे में बताएगा, शबरी के बारे में बताएगा, और शबरी मिलेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये भी नहीं जानते थे राम। सब घट रहा है। पॉजिटिव अप्रोच के लिए, पॉजिटिव कर्म के लिए, पॉजिटिव कर्म, सकारात्मक कर्म, केवल सकारात्मक सोचने तक सीमित मत रह जाना मेरे राम। आज बड़ा प्रचार हो रहा है पॉजिटिविटी का और वो केवल सोचने तक होता है, क्या सब ठीक हो जाएगा। ये पॉजिटिविटी तो वही है कि वही है, वही जो राम रचि रखा। ये सकारात्मकता नहीं है, ये कायरता है, कार्डनेस है। कर्म छोड़ देना और बैठ जाना ये भाग्यवाद है, ये डेस्टिनिज्म नहीं है, ये नियतिवाद नहीं है। नियति में कर्म है, नियति में कर्म है, व्यक्ति है, और व्यक्ति और कर्म का योग है। भाग्य में कोई योग नहीं है। अकर्मण्य लोग भाग्य के सहारे जीते हैं। तो मत जाना उस तरफ, पॉजिटिव कर्म करना है। थिंक डिफरेंट, नॉट ओनली थिंक डिफरेंट, डू डिफरेंट ऑल्सो। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।